ओम शांति। दुनिया में बहुत प्रकार के रेस होते हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, माराथन रेस भी होता है, कई किलोमीटर तक लोग दौड़ते रहते हैं। बाकी ये सारे जो रेस हम देखते हैं दुनिया में, थोड़े समय का है, परंतु संगम युग में बाबा हम सभी को ऐसा एक रेस में भाग लेना सिखाते हैं जो अंतिम श्वास तक दौड़ना पड़ेगा, है ना। नहीं, ये हमारी जो यात्रा है ये अंतिम श्वास तक की यात्रा है। दुनिया में जो लौकिक यात्रा करने जाते हैं लोग, थोड़े समय के लिए जाके घूम फिर के फिर वापिस आ जाते हैं, परंतु इस यात्रा में फिर हमें वापिस नहीं आना है, इस मृत्युलोक में नहीं आना है। कहां आएंगे? फिर से स्वर्ग में, नई दुनिया में हमें आना है। तो इस यात्रा में आप देखे होंगे जो माराथन रेस होता है, शुरू में खूब नशे से लोग दौड़ते हैं, थोड़े समय के बाद कुछ लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर आगे चल के जो पीछे वाले आगे हो जाते हैं, आगे वाले पीछे हो जाते हैं, फिर आगे चल के देखोगे लास्ट में कोई नहीं बता सकता है कि कौन फर्स्ट आएगा। लास्ट में देखो तो ऐसा भी कोई होता है जो एकदम आगे नंबर ले लेता है। ठीक इसी तरह बाबा की जो पढ़ाई है इस यात्रा में, बहुत बाबा के बच्चे शुरू में खूब नशे से चलते हैं, फिर बैलेंस खो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, कई तो रास्ता भी भटक जाते हैं, लेकिन अंतिम श्वास तक संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर विजयी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अभी ये सब देखेंगे, रुकने वाले भी देखेंगे, भटकने वाले भी देखेंगे, अटकने वाले भी देखेंगे, लटकने वाले भी देखेंगे, सब प्रकार के देखेंगे आप यहां, लेकिन अंत तक कौन जा पाएगा, कौन पहुंच पाएगा? निश्चय बुद्धि और बाबा की याद में जो है वो अंत तक पहुंच पाएंगे। एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं, जो हमारी ही कहानी है। एक देश में बहुत एक राजा था, बहुत प्रिय और प्रेमी था, लेकिन उसके कोई वारिस नहीं थे। सारे जीवन काल बहुत सेवा किया सबका, लास्ट में जब बुढ़ा हो गया, सोचा अभी तो मैं मर जाऊंगा, किसी को तो वारिस बनाना पड़ेगा, मेरा उत्तराधिकारी तो बनाना पड़ेगा। तो एक दिन अचानक सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल सवेरे सबसे पहले आके जो मुझे मिलेगा उसको मैं मेरा देश का राजा बना दूंगा, मेरा वारिस बना दूंगा। तो जब ढिंढोरा पिटाया, कई लोग थे ऐसे राजा ढिंढोरा पिटाया जो पहले मुलाकात करेगा उसको ऐसे ही राजा बना देगा। कई लोग संशय बुद्धि बने, हालांकि छोड़ो ऐसे ही सुना अनसुना कर दिए। कई लोग सोचे अरे यार चलना है, अगर पहले अगर मिल लें तो राजा बन जाए तो कितने बड़ी बात है। तो कई लोग रात को खा पी के 9 बजे से जाके, ऐसे भी राजमहल जो होता है शहर से थोड़ा दूर, टाउनशिप से थोड़ा दूर होता है, एक बाउंड्री होता है अंदर, बहुत अंदर राजमहल होता है, तो खा पी के रात को 9 बजे चल पड़े जाके राजदरबार में, पहले जाएंगे। लेकिन गेट तो गेट कीपर बोला कि नहीं सवेरे खुला जाएगा, अभी तो नहीं खुला जाएगा। तो इंतजार करते रहे, कई लोग 12 बजे रात को उठ के दौड़े, कई लोग 1 बजे, कई लोग 2 बजे, कई लोग 3 बजे, कई लोग 4 बजे, गेट खुला 6 बजे। तो बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे गेट खुला, सारी रात इंतजार कर रहे थे, जैसे गेट खुला अंदर दौड़े सब। लेकिन अंदर दौड़ते ही देखे कि इतना सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा, झरने हैं, बहुत सुंदर फूलों की महक, बहुत सुंदर। रात भर खड़े हैं और इतना सुंदर अंदर का ये देखे, कई लोग सोचे यार चलो कोई बात नहीं, अंदर तो राजमहल तो बहुत दूर है, थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा आनंद ले ले जाएंगे, कोई बात नहीं। कई लोग थोड़ा वहां वो गार्डन देख के एकदम विभोर हो गए, वो गार्डन की सुंदरता को देखते देखते उधर थोड़ा वहां अटक गए। कल उसे तो नहीं यार चलो राजा से मिलना है, आगे चले। आगे देखा गया कि बहुत सुंदर सुंदर राजा एकदम हलवाई मंगा के, बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़े और बहुत सब प्रकार के खाना पीना सब गरम गरम बना के, जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ। लोग रात को 9 बजे खा के आके होल नाइट पूरा खड़े हैं भूखे है। तो कहते अरे यार राजा से तो मिलेंगे, पहले खा तो ले, पेट भर के खाने लगे, क्योंकि मुफ्त जो चाहिए सब मिल रहा है, सब मिठाइयां सब तरह तरह की, सब जो चाहो सो। खाने पीने में लगे, चलो खा लेते हैं फिर तो जाएंगे, क्या है। फिर आगे चले, कई लोग कहते कि नहीं यार चलना है, मिलना है बाप राजा से। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है, इतना बढ़िया बढ़िया ड्रेस, साड़ियां सब प्रकार की वैरायटी, जो चाहो सो, और सब जो लेना है ले लो, मुफ्त है, कोई उससे कोई देना नहीं पड़ेगा, जो चाहो जिसको जो पसंद है ले लो। तो लोग अपने लिए तो सिलेक्ट किए, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही कोई क्या सब सिलेक्ट करने लगे, चुनने लगे, कई लोग उधर उलझ गए। फिर कई लोगों के मन में आया नहीं यार चलो इधर छोड़ो ये सब, आगे चलना है। फिर जब आगे चलते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर जूते, बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह के जूते, जितने स्टाइल चाहो, जो चाहो जो चाहो जितना चाहो ले लो, जो आपको मन पसंद का ले लो। कई लोग वहां उलझ गए। फिर कई लोग आगे चले, देखे तो वहां सुंदर सुंदर एकदम इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे चाहो ऐसा मोबाइल, जैसे चाहो ऐसा लैपटॉप, सब कुछ है, जो चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो। कई लोग उधर लटक गए। फिर आगे चले, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं आगे चलना है। आगे चलो तो सुंदर सुंदर इतने सोने के चांदी के, वहां हीरे जवाहरात सब प्रकार के रतन जड़ित इतने सुंदर सुंदर जेवर है। तो नहीं यार ये मेरे मिसेस के लिए लेके जाता हूँ, बाद में देखते हैं राजा वो ये तो ढिंडोरा पिटा सचमुच मिलता है कि नहीं, क्या नहीं, ये तो पहले ले जाए। तो लोग सब वो जेवर देखने में मस्त है, सब लेने में मस्त है। ऐसे लास्ट में देखा गया कि एक ही व्यक्ति था जो कि राजमहल में पहुंचा, बाकी रास्ते में सब एक 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 सब उलझ गए, ऐसे लटक गए उधर। एक ही व्यक्ति राजमहल में बहुत दूर था अंदर बाउंड्री से, तो जाके जब पहुंचता है वही राजा बना। कहने का भावार्थ ये हम बच्चों की कहानी है, अभी माया हम सभी के लक्ष्य के सामने बहुत सारे रंग बिरंगी ये सब पसारा खोल के, माया सब दुकान खोल के बैठी है। कई लोग तो संशय बुद्धि बन पड़े, हाँ ऐसे ही भगवान आए, ऐसे ही स्वर्ग में जाएगी देवता बनी, संशय में है। आखिर सभी मनुष्य तो भगवान के बच्चे ही है ना, लेकिन कई लोग अभी तक भी संशय बुद्धि है, लास्ट में वो पश्चाताप करेंगे। कई बाबा के बच्चे बाबा के बनने के बाद भी कोई खाने पीने में, कोई ठंडी हवा लेने में, कोई अच्छे कपड़े में, कई अच्छी जूते, कोई तो कोई लैपटॉप और मोबाइल और कोई गहने में उलझे हुए हैं। तो ये सब बहुत बड़े बाधक है हमारी यात्रा में। अंत में विजयी वो बनेंगे जिसका वैराग्य होगा। ये संसार असार अनुभव होना चाहिए। जिसको ये संसार के प्रति वैराग्य नहीं है, इस पढ़ाई में कभी वो पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंतिम पेपर 1 सेकंड का है। लास्ट में बाबा कभी नहीं पूछेंगे तुम क्या क्या किए हो। लास्ट पेपर क्या आएगा, एक सेकंड में अशरीरी भव। तो देखो किसी भी एग्जामिनेशन में पढ़ाई में क्वेश्चन पेपर पहले डिक्लेयर नहीं होता है, लेकिन बाबा कितने साल पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर भी पास होने वाले कितने होंगे, क्यों ऐसा? इसलिए बाबा कहते हैं ये माया बहुत बड़ी ठगनी है, माया भी कम नहीं है, बाबा के बच्चों को भटका देती है। तो अभी सबको निश्चय है कि अंतिम समय चल रहा है, जैसे मैराथन रेस में कैसा भी कोई दौड़ता रहता है, पहले जैसे तैसे दौड़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट में और थोड़ा समय बाकी है, एक दो टर्न बाकी है, तो कैसे दौड़ते हैं लोग, जी जान लगा के दौड़ लेते हैं ताकि वो जाके आगे नंबर ले लेते हैं। इसी प्रकार क्या अनुभव हो रहा है कि अभी लास्ट समय है, इसको लास्ट समय का एहसास हो रहा है, अभी लास्ट समय है, हाथ उठाइए पक्का इसलिए तो हाथ उठा रहा हूं तो देखिए आज ही बाबा ने कहा अंतिम समय का नजारा में क्या क्या होगा। बाबा तो कई मुरलियों में कई बातें बताए हैं, लेकिन बाबा के महावाक्य सुनने के बाद ना भगवान की गतमत कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता है। बाबा की बातों को सुन के 100% कोई नहीं कह सकता है, कितना भी बुद्धिमान हो। भगवान इतना बुद्धिमानों की बुद्धिमान है जो कि उसके वास्तव में महावाक्य में इतना राजू रमजबाज है, उसमें इतने गुह्यता है, रमणीकता है, बहुत एकदम गुह्य बातें हैं, इसको समझना इतना सहज नहीं है। इसलिए इस पढ़ाई में कोटो में कोई में भी कोई पास होते हैं। तो अभी जो नजारे हम देख रहे हैं, बाबा का साकार महावाक्य आप सभी सुने होंगे, बाबा ने कहा जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी विनाश शुरू हो जाएगा। पढ़ाई पूरी हुई है कि नहीं है, हो गई है पक्का? साकार में बाबा जो पढ़ा के गए वही रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा के कितने साल तक पढ़ाए हमको, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की भी पढ़ाई, अगर आप सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे, आप देखना जब नीचे डायमंड जुबली हॉल तैयार हुआ उसके बाद जितनी भी मुरलियां देख लो वो सारा रिवीजन ही है। तो अव्यक्त मुरली भी इतने सालों से रिवीजन, लगभग कितने साल हो गया, 20 साल हो गया, 95 में शुरू हुआ था नीचे, तो 95 से हाँ 20 साल हो गया। तो साकार मुरली तो इतने बार हम रिवीजन सुने, लेकिन अव्यक्त मुरली भी अगर देखा जाए तो 20 साल रिवीजन हो चुका है। अभी बाबा का जो स्वरूप है आप अनुभव कर रहे हैं, बाबा अभी शिक्षक रूप में नहीं आ रहे हैं, बाबा का स्वरूप सतगुरु का है, लंबे समय तक दृष्टि दे रहे हैं, सकास दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, फिर बाबा अभी संपूर्ण अव्यक्त हो जाएंगे, संपूर्ण अव्यक्त। बाबा ने बहुत पहले से कहा है, मुझे याद है 86 में शायद कहा है, बच्चे आगे चल के ऐसा भी समय आएगा कि तुमको खूब साधन मिलेंगे, खूब साधन मिलेंगे, लेकिन अगर आप साधन में उलझ जाएंगे, साधना कम कर देंगे, तो ये माया का रूप लेके तुमको परेशान करेंगे। साधन वास्तव में हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन साधन को आधार नहीं बनाना है, बाबा ने कहा। विज्ञान के साधन नहीं होता तो आज सेवा की इतनी वृद्धि भी नहीं होती। आज पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा देखो कितने बाबा के बच्चे कहां कहां दूर बैठ के भी कितना तन्मय हो रहे हैं, इतने गदगद हो रहे हैं, इतने फोन कॉल्स आते हैं कहां कहां से। तो ये साधन है, परंतु इसको ही दिन रात आधार बना के अगर हम लगे रहेंगे क्या होगा। तो बाबा ने कहा है ये साधन को आधार नहीं बनाओ, जहां यूज करो करो, फिर उसको जब नहीं चाहिए छोड़। छोड़ो बिल्कुल, वैराग्य होने चाहिए बिल्कुल, टच भी नहीं करना है। क्या ऐसे अनासक्त भाव से हम इसको यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि अंत में ऐसा होगा, अगर आज भी अगर मोबाइल छीन लिया जाए, कितने ब्राह्मणों की अवस्था एक रस अचल अडल रहेगी, देखना। बेचैन हो जाएंगे, बिन पानी जैसे मछली तड़पती है ऐसी हालत हो जाएगी कईयों की। और ये होना ही है। मैं अंत समय में, हमारी जब संतावनी दादी जी जब हॉस्पिटल में थे लास्ट दिनों में, जब शरीर छोड़ने से पहले ही उनको पूछा था कि दादी अंत में क्या होगा, दादी ने कहा ये सब साधन फेल हो जाएंगे, कुछ भी काम में नहीं आएगा, खाना पीने तक भी नहीं मिलेगा, ऐसे हालत होगी। जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा उनको सुबी रस पिलाएगा। शुरू शुरू में हमारी दादियों को बाबा ने महीनों तक, हमने देखा है, पानी तक भी नहीं पीते थे, महीनों तक मस्त रहते थे बिल्कुल एकदम, बाबा उनको सुबी रस पिलाते थे। तो अंत में भी सब जो संशय बुद्धि होंगे वो तो भाग जाएंगे सब इधर उधर, बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे जो एकदम लवली अवस्था में होंगे, बाबा उनको सुविरस पिलाएगा, सारे संसार का विनाश साक्षात्कार कराएगा, दिखाएगा क्या हो रहा है, भविष्य भी दिखाएगा। तो अंत में, लेकिन जो निराधार होके ये सब यूज किए हैं वही होंगे, नहीं तो जो इनको आधार बनाए हैं क्या होगा हालत, आप सोचो। तो अभी ऐसा समय आया है कि हमें ये सब चीजों से वैराग्य आना चाहिए, हमारी स्थिति को एकदम ऐसे उपराम करके हम रखें कि कभी भी बाबा का बुलावा आवे चल पड़े। ऐसे समेटा हुआ सब कुछ है कि और कुछ याद आएगा, अपने आप को चेक करने की बात है जी। यही तो होगा अंत में, अगर कहीं है और कहीं कुछ है अपना तो एकदम बहुत वहां खींचेगा। तो अंत में वास्तव में जो पेपर आएगा वो मन का पेपर आएगा। ऐसे तो पेपर तन का भी आएगा, क्योंकि शारीरिक व्याधियां एक ही साथ दसों दिशा से, पांच विकार, पांच प्रकृति, अपने स्वभाव संस्कार, बीमारियां, सब एक ही साथ चारों तरफ वार करेंगे, तो कैसी स्थिति होगी। इसलिए बाबा कितने समय से अचानक, अभी वो जो चेन्नई वालों की हालत क्या है, विनाश नहीं होगा तो क्या हुआ, आप अगर वीडियो देखोगे तो विनाश ही कहेंगे उनकी स्थिति जैसी हुई। तो ये तो बाबा झलक हमें दिखा रहे हैं, इससे हमारे पूरा संसार के प्रति वैराग्य आना चाहिए। अभी भी हम इधर उधर लटके हुए हैं तो क्या होगा। अंत में बाबा ने एक बार, मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया वाले बाबा को पूछ रहे थे, अव्यक्त पाव दादा को, कि बाबा अंत में क्या होगा। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा ने क्या कहा पता है, कि आप बच्चे जहां भी होंगे अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आपको टचिंग होगी, वहां से निकल जाओ, आप चले जाओगे, एक ऊंचे स्थान पर होंगे, फिर समुन्दर एकदम उछल खाएगा, हप करके ये कर लेगा। तो बाबा के बच्चे अगर बाबा की याद में हैं तो बाबा उनको छत्र छाया बनकर सेफ रखेंगे, एक कदम दूरी भी नाश होगा, बाबा के बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा, बाबा ने कहा है। तो क्या हमारी अंत में क्या बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। जब साकार में बाबा थे, बाबा को बच्चे आके सब कुछ पूछते थे, अपना जो चाहे घंटों तक बाबा से रूरवान करके पूछते थे। अव्यक्त होने के बाद भी, अव्यक्त पाव दादा को भी बच्चे रात रात बाबा बैठे रहते थे, कोई भी आता था कुछ भी पूछता था बाबा सब उत्तर देते थे। धीरे धीरे पार्ट ऐसा होने लगा, देखो अभी चाहो तो भी बाबा के पास जा सकते हो आप, लेकिन पहले बाबा एक एक बच्चा को वरदान देकर उनके मन के प्रश्नों को, और कुछ पूछना है बच्चे कहके सब कुछ राय सलाह देते थे। अभी ऐसा समय आएगा बाबा संपूर्ण अव्यक्त, बाबा को तो कई बार मिले थे। सबसे पहली बार जब मैं स्टेज में आके बाबा से मिला था, मेरा तो मैं कहां हूं, मुझे सुदबुद्धि नहीं था, और ऐसा लगा कि कहां हूं, पूरा मेरे शरीर है कि नहीं पता नहीं, और मेरे साथ दूसरे जो भाई थे, मैं एक भाई को बोला बाबा क्या वरदान देंगे प्लीज लिख के रखना, मुझे याद रहेगा कि नहीं पता नहीं। इतना इंटॉक्सिकेटेड पूरा ऐसा लगता था। बाबा ने पहला बार वरदान दिया था, सदा अचल अडोल निर्विघ्न रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, सदा इस नशे में उड़ते रहना। तो वो दिन कभी नहीं भूलता, रोज अमृतवेले याद आता है बाबा कैसे वरदान दिए थे। तो उन दिनों में इतनी सारी परिस्थितियां थी, लेकिन अंदर से दृढ़ विश्वास कि बाबा ने कहा कि अच्छा लड़ोल देखता हूं मुझे कौन हिलाता है, सारी दुनिया एक तरफ बाबा मेरा एक तरफ, सचमुच सब हार गए। कहने का मतलब है एक समय था बाबा पर्सनली वरदान देते थे, पर्सनली मिलते थे, वो दिन गया। अभी कुछ पूछना है तो देखो चलो दादी ने, बाबा नहीं है तो दादियों को भी पूछते थे, बड़ों को भी पूछते थे, हमारी दादियां भी सब अव्यक्त हो गए। अभी आप किसी के पास कुछ राय सलाह लेने के लिए, पूछने के लिए भी कोई ऐसे हमारे बाप समान सभी अव्यक्त होते जा रहे हैं, अंत में क्या होगा, कोई नहीं रहेगा। बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी बाबा उसको टच करेगा। तो बुद्धि की लाइन क्लियर किसके कहेंगे, ये सारा दिन मोबाइल में बात करता रहेगा, नहीं लाइन क्लियर रखना पड़ेगा ना, मोबाइल ऑफ करके रखेंगे तो कैसे आएगा मैसेज। तो बुद्धि की लाइन क्लियर बाबा उसको कहते हैं जिसकी तीन बातें अगर है, तीन बातें बाबा अव्यक्त दादा के महावाक्य है, तीन बातें अगर है जीवन में बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे। कौन सी तीन बातें जी, ठीक ही वाला तीन बातें हैं। बाबा ने कहा कि अगर आप बाबा की याद में हो तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर मानी जाएगी। दूसरी बात, अगर मन में ज्ञान का चिंतन चल रहा है तो भी बुद्धि की लाइन क्लियर मानी जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई सेवा का प्लानिंग चल रहा है, मैं ऐसे सेवा करूं, यहां जाऊं, ऐसे करूं, ये करूं, सेवा की प्लानिंग चल रही है तो बुद्धि की लाइन क्लियर। आज क्या छुंक लगा के सब्जी बना के खाऊं, अरे आज कौन से जूता पहनूं, आज कौन सा ये करूं, ये सब बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ हुआ अचानक विनाश। तो इसलिए बाबा कहते हैं या तो निरंतर बाबा को याद करो, या तो ज्ञान का मनन चिंतन करो, या तो कैसे सेवा करूं, कैसे बाबा कहते चिंता लग जानी चाहिए तुमको, कैसे दूसरों को संदेश दूं, कैसे बाबा का। आपको लगता है कि बहुत लोगों को संदेश मिल गया है, मैं कितना ट्रैवल करता हूं देखता हूं पता ही नहीं लोगों को, कुछ भी पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कितने करोड़ लोगों को अभी तक भी पता नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। बाबा के पास पार्टियां आती थी तो बाबा पूछते थे बच्चे रात को सोए अच्छी तरह से, बच्चे कहते हाँ बाबा अच्छी तरह से, बाबा कहते थे बुढ़ा बाप को नींद ही नहीं आती है। बाबा को चिंता लग गई थी कि कैसे सारे विश्व का कल्याण होगा, तो हमें भी ऐसे चिंता लगनी चाहिए दिन रात। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे सेवा के लिए दिन रात भागते रहते हैं वो बच्चे बाबा को, शिव बाबा को लगते प्यारे जो दिन रात खा पी के गुजारे, नहीं जो सेवा में गुजारे। तो बाबा को अति प्रिय है जो दिन रात बाबा सेवा बस उसके सिवा और कुछ ना सुझे, क्योंकि अंतिम स्थिति हम बच्चों की बाबा ने कहा है कि निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। तो बाबा और सेवा के अलावा और कुछ बुद्धि में ना सूझे तब कहेंगे बुद्धि की लाइन क्लियर। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बाबा अगर कुछ प्रेरणा भी देंगे कैच नहीं कर पाएंगे, विनाश। फिर अंत में अगर बाबा याद नहीं है तो अंतमति, और कुछ बातें अगर बुद्धि में है तो कितने साल की तपस्या भी जीरो, सारा जीवन ब्राह्मण बने लेकिन अंत में बाबा याद नहीं रहा तो क्या फायदा हुआ फिर। तो अभी हमारी मानसिक स्थिति को ऐसे बनाने पड़ेगी, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा पेपर वो मन का ही है, क्योंकि जो भी समस्या होगा मन को ही हलचल करेंगे, मन ही ठीक रहे तो ठीक रहेगा। इसलिए कहा जाता है मन जीते तो अंत में मन ठीक रहे, मन कहीं नहीं भटके, मन मना भव होके रहे। तो कैसे हो सकता है? ये बहुत लंबे समय का अभ्यास से ही होगा। और मन को सभी बातों से हटाकर मन मना भव स्थिति, ये जब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पूछता है, हे प्रभु मेरा मन तो एक बेलगाम घोड़ा की तरह इधर भागता उधर भागता, क्या करूं प्रभु, मन तो विवश बिल्कुल, मैं इसको नहीं कंट्रोल कर पाता हूं। तो भगवान ने क्या शिक्षा दी? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन को तभी बस में रख सकते हो इसके लिए दो बातें, एक है वैराग्य वृत्ति, संपूर्ण वैराग्य वृत्ति, और दूसरा सतत अभ्यास। जिसको ये संसार असार नहीं लगा है उसका मन कभी कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। तो सचमुच संसार के प्रति वैराग्य भाव आया है? खुद को पूछें, हम अपने आप को पूछें। एक्चुअली देखा जाए संसार में कहीं भी जाओ क्या हालत है, किस प्रकार गंदगी, किस प्रकार के मनुष्य के हाव भाव चाल चलन, क्या हालत है दुनिया। सचमुच देखा जाए तो रौरव नरक है। बाबा के घर में कितना सुख है, मुझे तो मैं कहीं जाऊं ऐसा लगता है कैसे दौड़ के भाग के आऊं, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके दौड़ के आऊं। नहीं नहीं जाओ तो फिर सेवा फिर कैसे करेंगे? तो देखो जिसका जो पार्ट मिला है, बाबा को जो पार्ट जिसको दिया है वो पार्ट को ठीक करें। किसका पार्ट क्या है, किसका गणेश का पार्ट है, किसका कार्तिक का पार्ट है, कोई गणेश बन के यहाँ ही चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्तिक बन के घूम रहे हैं, दोनों जिसको जैसा है। मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कभी बाबा मुझे भेजेंगे कहीं सेवा करने के लिए, लेकिन मेरे मन में दादियों को मैं नजदीक से जब देखता था, कभी कभी बुलाते थे किसी हेल्थ संबंधित बातों के लिए कि कहीं किसी कारण से जब जाता था नजदीक देखता था, आज से 3-4 साल पहले मेरे मन में एकदम ऐसा लगा कि बहुत जल्दी बहुत कम समय में विनाश हो जाएगा, क्योंकि दादियों की स्थिति जैसी है जैसा है, पूरा जैसे उपराम बैठे हुए हैं, सचमुच बाबा ही दादियों को चला रहा है। बाबा चाहे तो कब से ले जाते, लेकिन हम बच्चों की वास्तव में उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत कुछ है। यज्ञ के लिए रक्षक बनकर बैठे हैं, उनके वाइब्रेशन से पवित्रता के बल से आज सब कुछ थमा हुआ है। जिस घड़ी हमारी दादियां जितने भी हैं जो आदि रतन हैं, यज्ञ के आधार स्तंभ हैं, जिस दिन अव्यक्त हो गए आप देखना कैसे होगा, सारे संसार में हलचल शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियां हो रही है, आप देख रहे हो सुन रहे हो न्यूज व्यूज। रसिया तो मैं जब रसिया पूरा विभाजन हो गया सोवियत यूनियन, मैं सोचा बाबा ने कहा अमेरिका रसिया लड़ेंगे तो ऐसा हो गया, अभी क्या होगा। लेकिन देखो फिर अंत में अभी रसिया कैसे पूरा एकदम तैयार होके बैठा है, सारे उसके इतने मिसाइल्स और ऐसे बना के रखा है, किस घड़ी भी कुछ होगा आप देखना, और जिस घड़ी होगा एकदम तबाही, चारों तरफ महाविनाश। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ माना खलास सब कुछ। भारत में जिस प्रकार देख रहे हो प्राकृतिक आपदा, हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं। तो ये सब अंतिम समय की सूचना। बाबा अभी टीचर का रोल पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, बाबा अब भी संपूर्ण अभ्यक्त हो जाएंगे, दादियां कोई नहीं रहेंगे, क्या होगा फिर? जैसे महाभारत में लास्ट में दृश्य दिखाया जाता है, भील लोग आए खूब पिटाई किए पांडवों को, तो खूब लूटे। तो अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी आएंगे लोग। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों से साक्षात्कार होगा, अगर हम बाप समान बने हैं, एकदम शांति शक्ति सब कुछ भरपूर है, हमें देख के साक्षात्कार होगा। जैसे बाबा को शुरू शुरू में एक व्यक्ति मारने आया, तो एकदम जाके बाबा के चरण में गिर पड़ा। तो ऐसे ही हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हमें कुछ भी कोई नहीं करेगा, साक्षात्कार होगा उसको। लेकिन ऐसी स्थिति हो तो नहीं, तो फिर तो आके लूटेंगे। इसलिए अभी अंतिम समय का नजारा हम देख रहे हैं, तो अभी भी अगर हम नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो अंत में तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है अंत में साक्षात्कार का जो समय होगा वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अव्यक्त अवदाता के महावाक्य है, क्यों? क्योंकि जब साक्षात्कार शुरू होगा बहुत बाबा के बच्चों को पश्चाताप होगा, अरे हम ऐसा करते तो अच्छा होता, हम भी थोड़ा पुरुषार्थ करते तो अच्छा। बहुत बाबा के बच्चों को पश्चाताप होगा, खून के आंसू बहेंगे। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो आंसू बहाएंगे ही, लेकिन बाबा के बच्चे होके जो अलवेले हैं, पुरुषार्थ ठीक से नहीं किए हैं, वो खून के आंसू बहाएंगे। और बाबा बच्चों का पश्चाताप बाबा को सहन नहीं होगा, इसलिए बहुत जल्दी पाठ परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने कहा है इसलिए जैसे एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलने के लिए कितना टाइम लगता है, नोटिस बोर्ड में निकल गया कि आजकल तो इंटरनेट में एक सेकंड में सब पता चल जाता है। इसी प्रकार साक्षात्कार होने के लिए, बाबा प्रत्यक्ष होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बच्चों के लिए ही सब कुछ थमा हुआ है। तो अंत में बाबा ने कहा है कि दो प्रकार के क्यू लगेंगे, एक प्राप्ति स्वरूप बच्चे, दूसरे पश्चाताप करने वाले। हम किस लाइन में खड़े होंगे? पक्का सब कुछ बाबा से लूट लिए हैं। तो मुझे याद है हमारे भी स्वरतन दादा जो थे, कई बाबा के बच्चे पूछते थे दादा ठीक हो, तो बाबा पूछते थे आप ठीक हो, तो हाँ बाबा, हाँ दादा, तो ठीक हो माना क्या? दादा फिर पूछते थे ठीक हो माना क्या? तो बाप समान बने हो, बाप समान बने हो तो ठीक हो, नहीं तो क्या ठीक है, क्या ठीक है? तो कहने का मतलब है बाबा से सब कुछ हम इतना प्राप्ति कर चुके हैं भरपूर, कोई हिसाब किताब कहीं कहीं अकाउंट नहीं, इतनी सेवा किए हैं कि भरपूर पूरा माला माल एकदम जब बाबा ले चले। तो इसलिए बता रहा था मैं, तीन चार साल पहले जब दादियों को देखा मेरे मन में आया अरे बाबा रे, अरे कब कब कुछ हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। मैं रोज बाबा के पास आके रुरुहान करता था अमृत वाले कि बाबा अभी जो सेवा कराना है मुझे करा लो, मैं तो तैयार हूं। अंत में बिल्कुल नहीं कहना मुझे कि तुमने सेवा नहीं की, क्योंकि उच्च पद का आधार ऐसे तो चारों सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहां जितने सेवा करेंगे बाबा के दिल तख्त मशीन बनेंगे, भविष्य में भी उच्च पद मिलेगा। सेवा एक साधन है, परंतु साथ साथ हमारी धारणा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चारों सब्जेक्ट में पास होंगे, बहुत लंबे समय से योग अभ्यास द्वारा हमारे भी कर्मों को दग्ध नहीं किए हैं, संस्कारों को नहीं बदले हैं, तो भी उच्च पद नहीं मिलेगा। सजा खा के जाएंगे, प्रजा बनाएंगे यहाँ, राजा दूसरा कोई बैठा होगा उधर। तो इसलिए खाली सेवा 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 और स्थिति ठीक नहीं है, योग अभ्यास नहीं किया, विकर्म दग्ध नहीं किया, तो भी उच्च पद नहीं मिलेगा। इसलिए चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रख के चलना तो पड़ेगा, परंतु मुख्य है, बाबा कहते हैं चंद्रवंशी कौन बनेगा? जो योग में फेल होगा, योग सब्जेक्ट में फेल होगा। तो योग, मुझे एक बार याद है हमारे अफ्रीका में, हमारे नैरोबी में जो हमारी दीदी है वेदांती दीदी, एक बार क्लास करा रही थी हमारे हॉस्पिटल में, तो कहती है भले हम कहते हैं 9 लाख ब्राह्मण है, लेकिन 9 लाख ब्राह्मण में से रोज एक दिन भी मिस ना हो अमृत वेले कितने उठते होंगे। अच्छा, जो रोज अमृत वेले उठते भी हैं, लेकिन एक्यूरेट पूरा अलर्ट होके एकदम पावरफुल, एकदम बाबा से लगन में मगन होके गदगद होके बाबा से सर्व प्राप्ति अनुभव करने वाले कितने होंगे। और उसमें वैसे भी खाली मैं आत्मा हूं, बाबा से शक्ति ले रहा हूं, उतना तक सीमित नहीं, विश्व सेवा, लाइट हाउस, माइट हाउस बन के फरिश्ता होके पूरा सारे विश्व परिक्रमा लगा के अंतरिक्ष में सारे सबको सकास देके, 5 तत्वों को भी पावन बनाने वाले, सभी आत्माओं को सकास देने वाले कितने आत्मा है, अंदाजा लगाओ। तो इसलिए योग सब्जेक्ट बाबा ने कहा है साधारण नहीं समझना, लंबे समय से अगर अच्छी तरह से आप योग में अभ्यासी हो तो अंत में पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। और विकर्म अगर रह गया, दग्ध नहीं हुआ, संस्कार परिवर्तन नहीं किया, तो उच्च पद नहीं मिलेगा, कितने भी सेवा किए हो, कुछ भी किए हो। तो बहुत दोनों सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में जो हम सभी को अटेंशन देना पड़ेगा कि बाबा ने हमें बैठा बैठा योगी नहीं बनाया है। मुझे याद है एक बार हमारे हॉस्पिटल में एक भाई था, उसको ऐसा लगन लग गया कि ऐसे दिसंबर महीना था, खूब ठंडी हो रही थी, बोला मैं 18 जनवरी तक तो कर्मातीत हो ही जाऊंगा, और यहां से हसरा से भाग गया और जाके किसी गुफा में बैठ गया। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, कहां गया, किधर गया, हम ढूंढते रहे। तो फिर ढूंढते वो देलवाड़ा के पास एक किसी मंदिर के वहां कोई गुफा था, वहां बैठा हुआ था। तो जाके पता चल गया, जाके बोले कि अरे भाई तू क्या खा रहा है, दो दिन हो गया, ब्रेड चाहिए, हाँ ले आना यार। तो कोई जाके ब्रेड दे रहा है, कोई जाके क्या दे रहा है। फिर हमारे निर्मल भाई जी को पता चला। तो बोले कि जाए उठा के क्या उठा के, ऐसे कोई कर्माती थोड़ी बनता है। तो फिर उसको उठा के क्या है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसे सन्यासी नहीं बनाया जो कहीं बैठ के गुफा में बैठे बैठे सन्यासी ऐसे कर्मातीत हो जाएंगे, नहीं, हमें कर्मयोगी बनकर दिखाना है निरंतर। इसलिए देखो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान वाच है, तस्मात सर्वेषु कालेषु योगीर भवार्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी हो जा। योगी जीवन, बैठा बैठा योगी नहीं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब कुछ करते सेवा करते हुए भी बाबा बिल्कुल विस्मृत ना हो, हमारे व्यवहार चाल चलन सब कुछ। बैठे बैठे रेड लाइट में तो मैं आत्मा हूं ठीक है, बाकी टाइम में एकदम गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ हो रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। नहीं, हमारा जीवन ही योगी जीवन हो जाए। तो निरंतर याद और सेवा। बाबा ने क्या कहा जानते हैं, अंत में ऐसा समय आएगा कि सारी रात आप भट्टी करोगे और दिन में धूप में कहीं अपने हाथ को भी तकिया बना के 4 मिनट अशरीरी अनुभव करेंगे, 4 घंटे की नींद जैसा अनुभव होगा, बाबा ने कहा है। तो ऐसा समय आएगा, एक एक को 10-10 की सेवा करनी पड़ेगी, बाबा ने कहा है। तैयार हैं हम सभी? तो आप टीचर बहनों के लिए 10 सेंटर, बाकी सबको हमको 10-10 की सेवा करनी पड़ेगी, बहनों के लिए 10 सेंटर संभालनी पड़ेगी, अभी संभाल रहे हैं बहने। लेकिन कहने का भावार्थ है कि ऐसा समय आएगा कि हम अपने लिए और कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है वो दिन जब हॉस्पिटल शुरू हुआ, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आया था, बहुत बिजी, दिन में 200-250 पेशेंट देखता था, दिन रात इतना बिजी था। तो मैं जब छोड़ के आया, यहाँ हॉस्पिटल में इतनी सेवा नहीं, तो मैं, हमारी दादी थी प्रकाशमणि दादी जी उन दिनों में, तो दादी को कहा, दादी मुझे बहुत बोर लग रहा है, यहाँ कोई सेवा नहीं है, बहुत बोर लग रहा है। तो दादी कहती है कि अभी बाबा ने आपको मौका दिया है, जो ज्ञान बल योग बल भरना है भर लो, रिसर्च कर लो, आगे चल के देखना बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगा। और वो दिन और आज मैं वही अनुभव करता हूँ, सारी पूरा लाइब्रेरी रखा हूँ, किताब पढ़ नहीं पाता हूँ, सब पूरा देखते हुए भी खुद के लिए समय नहीं मिलता है, दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। तो अंत समय अभी एकदम नजदीक है, ये दोनों लेसन पक्का करें। लेकिन कैसे ठीक होगा, जब बेहद का वैराग्य होगा, अब दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं, बस ज्ञान योग में ही रुचि रहे और सेवा, जहां भी सेवा है तो ही हो सकता है। कहीं भी अगर रुचि रही, जैसे राजा के दरबार में जा रहे थे सभी, कहीं लटक गए, तो फिर बस क्या होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना हो, अभी हम सभी ऐसा पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ। अभी लास्ट में एक सब्जेक्ट को कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता है, लास्ट में आप 2-3 महीने में सारी मुरलियां भी पढ़ लोगे, सारी किताब पढ़ भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, जितना धन संपत्ति जो भी है बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर देंगे, कौन सी बड़ी बात। लेकिन अंत में योग सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए जनक राजा भल स्वाहा हो गए लास्ट में, लेकिन त्रेता के अंत में ही वो राजा बन पाए। अगर सत्ययुग की शुरुआत में आके कृष्ण के साथ आना है 1-1-1 में और संपूर्ण स्वर्ग का सुख लेना है, तो बाबा कहते लंबे समय से योग अभ्यास द्वारा विकर्म दग्ध करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा चार्ट हम बनाएं अपनी दिनचर्या को, बाबा ने कहा है, मैं हमारी दादी को बहुत बार पूछता था, आप सभी सुने होंगे भी, बहुत सारी दादियां बताते हैं, बहुत सहज है 8 घंटा याद का चार्ट रखना, बहुत सहज है। सवेरे 4 घंटा, 4 से 8, ये समय बिल्कुल मौन रहना है। बहुत जरूरी है तो किसी बात करनी है, नहीं तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। सवेरे 4 से 8 बजे तक और शाम को भी 6 से 10 बजे तक। ये सवेरे 4 घंटा, शाम के 4 घंटा बाबा के लिए मैं दिया हूं, ऐसे सोच के। बाकी दिन में तो सेवा करेंगे, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये 8 घंटा कोई चाहे तो बहुत सहज है, कर सकता है, दादी ने कहा है। और दादी को तो मैं कई बार पूछता था, दादी कैसे पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, बहुत बार पूछता था। दादी कभी नहीं कहा कि बैठे बैठे जाके कुछ करो, ऐसा नहीं। दादी ने शुरू में, मुझे याद है, एकदम जब शुरू में आया था, मैं गुलजार दादी को पूछा, दादी मैं बहुत हॉस्पिटल में बहुत कम सेवा है, मैं फ्री हूं, मैं क्या करूं, मैं शाम के समय में म्यूजियम जाके सेवा करूं कि पांडव भवन में जाके तपस्या करूं? तो दादी ने क्या कहा होगा, दादी कितना सुंदर युक्ति युक्त उत्तर दिए, सुनो। दादी ने कहा, देखो अगर खाली बैठ के तपस्या करते हो तो सिंगल कमाई है, सेवा करते हो तो डबल कमाई है, लेकिन लेकिन बाबा दादी ने एक शर्त रखा। दादी ने कहा कि आप देखो, आप म्यूजियम जाओगे, वहां बहुत प्रकार के लोग आएंगे, देह अभिमानी लोग आएंगे, रंग बिरंगी कपड़े पहन के आएंगे, अगर आपकी दृष्टि वृत्ति चलायमान हो रही है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, आके पहले तपस्या करो, अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ, फिर बाद में जाके सेवा करो। राइट बात है ना, नहीं? कितनी सही बात है। देखो अगर हम सेवा करते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, वो सेवा नहीं है। तो इसलिए अगर सेवा करते समय भी हमारी स्थिति बाबा को याद करते हुए, एकदम कोई उल्टा सुलटा कितना भी प्रश्न पूछे, कई बाबा के बच्चे एकदम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, कोई अगर उल्टा सुलटा प्रश्न पूछ देते हैं तो एकदम तुरंत चिढ़ जाएंगे, तो फिर वो सर्विस थोड़ी होगी। तो इसलिए हमारी स्थिति कोई कैसा भी हो, एकदम शांत प्यार से हम अगर उनको बाबा की याद से अगर सेवा कर रहे हैं तो कमाई है, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब है कि सेवा भी बहुत प्रकार के हैं, जो भी सेवा करें, लेकिन हमारी स्थिति अच्छी हो। लेकिन मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अंत में तो स्थूल सेवा करने का मौका भी नहीं मिलेगा, वाचा सेवा वगैरह जब तक है वो वाचा सेवा भी कर नहीं पाएंगे, कितने लोगों को वाचा सेवा करके सुनाएंगे। मनसा सेवा ही वास्तव में सबसे लास्ट है। जो बहुत लंबे समय से मनसा सेवा का अभ्यासी होगा, वो मनसा सेवा द्वारा सबसे नंबर सेवा में भी आगे नंबर ले लेगा। तो मनसा सेवा कैसे हो सकता है? एक बार दादी, मुझे याद है, दादी कहती थी, जो राजा बनेंगे वो जो अमृत वेले का समय 4 से 4:45 वो विश्व सेवा करेंगे। उस समय बाबा के साथ कंबाइंड होके एकदम लाइट हाउस स्थिति में रहके सारे विश्व को सकाश देने की सेवा करेंगे। उस समय उठ के मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, वो फिर नहीं, वो रटा नहीं लगाएंगे। इसलिए बाबा की तो कई महावाक्य है, आप सुनेंगे तो हंस हंस के पेट फट जाएगा। बाबा के तो जैसे कोई एयरपोर्ट में जाओ ना, जैसे प्लेन उड़ते हैं, तो बाबा भी सवेरे सवेरे देख रहे थे। कई बच्चे तो एक तो आते हैं अमृत वेले लेट, आएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे गाड़ी गुर्र 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 स्टार्ट ही नहीं, और उड़ने के तो दूर की बात है, स्टार्ट करते करते 4:45 हो गया, कई तो थोड़े समय गुर्र करके चलते चलते 4:45 हो गया, कोई थोड़ा सा ऊपर उड़ान भरे हैं कि नहीं। तो बाबा के पास पहुंच के विश्व सेवा करने तक बहुत थोड़े बच्चे ही ऊपर पहुंचते हैं। तो जो राजा बच्चे बनेंगे उस अमृत वेले 4 बजे से पहले अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, बाबा से जो रूहान। देखो बाबा ने एक किताब है, यहाँ हमारे लिटरेचर स्टॉल में उपलब्ध है, अमृत वेला, जो भाई बहने पढ़े हैं हाथ उठाओ, पूरा पढ़े हो, पूरा पूरी किताब पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़े हैं मैं कहूंगा जरूर पढ़ना। दूसरी किताब एक है वारे में ब्राह्मण आत्मा, जो भाई बहने पढ़े हैं हाथ उठाओ। बस पूरी किताब नहीं पढ़े हैं, पूरी किताब पढ़ना है, पूरी किताब पढ़े हो आप। अगर वो वारे में ब्राह्मण आत्मा वो किताब पढ़ेंगे, बाबा ने ब्राह्मण किसे कहा है वो पूरा शुरू से लेके अंत तक अव्यक्त मुरलियों में जितने ब्राह्मण आत्मा के ऊपर जो भी पॉइंट से सब उसमें संकलन किया गया है वो किताब पढ़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, आप अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़े हो, श्रीमद् भगवद गीता में ये जो वर्णों की कहानी है उसमें वर्णन है, जो वर्ण है शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सारी वर्णों की बातें उसमें बहुत सुंदर व्याख्यान है। उसकी आध्यात्मिक परिभाषा को लोगों ने कदर्थ कर दिया, उसका अर्थ को बिगाड़ दिया। वास्तव में शूद्र किसे कहा जाता है जानते हैं? हम पहले क्या थे? शूद्र थे। शूद्र किसे कहा जाता है? जो भगवान को नहीं पहचानता है, जो विकारी दृष्टिवृत्ति है, विकार को ही सुख का साधन समझता है, जिसकी गंदी दृष्टिवृत्ति है, दुख देना दुख लेना जिसका धर्म है, उसको शूद्र कहा जाता है। जैसे परमात्मा की पहचान मिलती है, भगवान को पहचान लेते हैं, फिर हम शूद्र से क्या बन जाते हैं? पक्का नहीं, इसलिए तो बोला शूद्र से कोई फट से ब्राह्मण नहीं बनता है, पहले हम बनते हैं वैश्य। वैश्य किसे कहा जाता है? दुनिया में जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उसको कहते हैं वैश्य, जो धन कमाने में दिन रात धन कमाने में ही लगे रहते हैं। तो जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, सबसे पहले हम बाबा से ज्ञान धन गुण धन शक्ति धन लूटने में जहां जाएंगे अच्छा अच्छा पॉइंट नोट करेंगे, कहां बढ़िया क्या मिल रहा है, कहां से अच्छा पेन मिल रहा है, कहां डायरी मिल रहा है, कहीं कीरिंग मिल रहा है, कहीं क्या सौगात, सब लूटने में मस्त होते हैं, सब वो सब लूटने में। तो पहले हम वैश्य बनते हैं, थोड़े समय के बाद हमें पता चलता है माया क्या है। पहले तो माया पता नहीं चलता, माया के अजगर के पेट में ही थे। तो जब माया पता चलता है फिर माया के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि सवेरे सवेरे उठ के हम चलेंगे सेंटर, सवेरे सवेरे क्यों जाता है, कहां जाता है, तो लौकिक वाले खींचेंगे उधर, बाबा खींचेगा इधर, चलेगा एक टग ऑफ वार। तो उस समय हम अनुभव होता है हम सभी क्षेत्रीय। तो ये क्षेत्रीयपना बहुत बाबा के बच्चों का बहुत लंबे समय तक चलता है, और जो अंत श्वास तक अंतिम श्वास तक ये युद्ध चलेगा, कभी माया एक थप्पड़ ढसुम, कभी माया को एक ढसुम, ये चलता रहेगा, वो अंत में चंद्रवंशी बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर ज्ञान बल योग बल जमा करके जब हम सभी एकदम विजयी बन जाते, माया आए तो ऐसी की तैसी दूर से ही पहचान करके ढिसम उड़ा दे उसको, माया हमारे पास भी पटक न सके, तब ऐसे समय में कहेंगे विजयी ब्राह्मण, विजयी ब्राह्मण। तो जो लंबे समय तक माया जीत होके विजयी होके प्रकृति जीत माया जीत निद्रा जीत होके एकदम विजयी होके रहते हैं वो बनते हैं फरिश्ता। जैसे हमारी दादियां जहां जाएंगे उनके कदम में पद्मों की कमाई, जहां जाएंगे सेवा ही सेवा, सबको उड़ाते रहेंगे उड़ते रहेंगे, तो तब कहेंगे फरिश्ता। फिर जो बनेंगे फरिश्ता वो बनेंगे, तो इसलिए कोई फट से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। मैं क्यों कहा है वो किताब पढ़ने के लिए कि वो किताब पढ़ेंगे ना आपको लगेगा अरे मैं तो ब्राह्मण ही नहीं बना हूं, फरिश्ता देवता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सभी को पढ़ना जरूरी है, और अमृत वेला किताब पढ़िए। बाबा ने जो विधि बताया कैसे अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेला अगर पावरफुल किया सारा दिन बहुत सुंदर अनुभव होगा। बाबा से जो वरदान प्राप्त करना है उस समय बाबा भोलानाथ होके बिल्कुल सभी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे जीवन में एक बहुत सुंदर टर्निंग प्वाइंट मैं बता रहा हूं, मैं जिस दिन अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था एक मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैं तो एकदम जंप मारने लगा, मैं बोला कि वाह इतना सहज, अगर एक घंटा अगर अच्छा कर लो तो बाबा अगर जीवन की सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उससे और क्या सस्ता सहज पुरुषार्थ है बताओ। तो इसलिए अमृत वेला एकदम पावरफुल हो, अच्छा हो, खाली ऐसे नेमिनाथ जैसे आके खाली टाइम पास नहीं। तो अमृत वेला किताब पढ़ के बाबा जो विधि बताए, सवेरे सवेरे उठ के आके बाबा के पास एकदम खुशी से गदगद होके आके लगन में मगन होके बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, फिर बाबा से बिल्कुल संपूर्ण समर्पण, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा आपका ही हूँ। बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा से बहुत सुंदर, बाबा से पहले ड्रिल करो, बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल करो, क्योंकि मन सारा रात भर सोए रहते हैं तो सवेरे संकल्प नहीं चलता है, इसलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए पहले ड्रिल करो, बाबा के सामने बैठ के अभ्यास करो, मैं साकारी रूप में ब्राह्मण आत्मा हूँ, प्रकृति तख्त में मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, साकारी शरीर में बाबा के साथ साथ मैं तपस्यारत हूँ। फिर एक मिनट अभ्यास करके फिर अभ्यास करें कि मैं सूक्ष्म बतन में फरिश्ता हूँ, एकदम प्रकाश की काया में, लाइट के गर्भ में, मेरे मस्तक के चहों और बिल्कुल एक सुंदर प्रकाश का ताज है, मैं बिल्कुल फरिश्ता हूँ। फिर एक मिनट में मूल बतन में निराकारी स्वरूप में हूँ, वहां थोड़े समय, फिर स्वर्ग में मैं विश्व का मालिक संपूर्ण निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूँ, शंख चक्र गदा पद्म मेरे माथे पर, विजय का तिलक है, वैजयंती माला है गले में, डबल सिरताज में विश्व का मालिक हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। तो साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, एक दो तीन चार, कैसे ड्रिल करते हैं बच्चे, तो ऐसे ड्रिल बाबा कहते हैं 5-10 मिनट करो, फिर फरिश्ता रूप में बाबा के सामने बैठ जाओ, एक छोटे बच्चे के रूप में बाबा से वरदान लो, फिर बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करो, फिर बाबा को देखते रहो, बाबा से एकदम पावरफुल लाइट माइट आ रही है, मेरे आत्मा के जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध हो रहे हैं और मैं बिल्कुल बाबा जैसे संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा हूँ, अनुभव करो। मैं क्योंकि बहुत यहाँ बाबा के बच्चों को मैं बहुत समय से देखा हूँ, एक बार एक बेंगलोर से एक भाई आते थे, वो अभी बहुत दिनों से नहीं देख रहा हूँ उनको, मैं शार्प 2 बजे देखता था, डेली आके पूरा बाबा के ट्रांसलेट के सामने एकदम बैठ जाते थे, काफी उम्र था, 70 से भी ऊपर था, बैठ जाते थे चुपचाप, बिल्कुल एकदम हिलते ही नहीं थे लंबे समय तक। मैं एक दिन ऐसे पूछा कि आप कैसे योग लगाते हो, क्या करते हो, तो बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बाबा को देखता रहता हूँ, बाबा से दिल की बातें करता हूँ, सारी बातें पूरी हो जाती है तो बाबा को देखता रहता हूँ, बाबा आप भी बिंदु मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु मैं भी बिंदु, बिंदु हो जाता हूँ बस। कितने लंबे समय तक ऐसे पूरा बिल्कुल हिलते नहीं थे, बैठते थे। और एक लंदन से एक भाई आते थे, वो कैप्टन थे, वो भी घंटों तक, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर बाबा समान बन के 4 से 4:45 विश्व परिक्रमा लगा के लाइट माइट दे के सारे विश्व को, 5 तत्वों को भी, सभी आत्माओं को, देश विदेश में जाके जहां भी देखो, जैसे वहां तूफान आया, कहीं कुछ हुआ, फ्लड्स आया, लोगों के परेशान हो रहे हैं आत्माएं, उनको सकाश देना तो ही राजा बनेंगे। तो सभी भाई बहने अमृत वेले का जो किताब है वो पढ़िए अच्छी तरह से, अभी लास्ट समय है, बाबा से जो लेना है ले लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत वेला अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।
अपने अंतर आत्मा को शांत भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं अनुभव किया हूँ, सुना रहा हूँ। बहुत बाबा के बच्चे जब भी योग में बैठते हैं आंखें क्या होती है, बाबा ने कहा है आंखें बंद करने के लिए। बहुत काल का भक्ति का संस्कार है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आंखें बंद कर देना माना ऐसा है जैसे कि सूर्य के सामने खिड़की दरवाजा बंद कर देना, तो रोशनी मिलेगी। योग माना बाबा को दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, हो बाबा देखता रहूं। तो बाबा को देखते रहना है, बाबा से अनुभव होगा, बाबा कैसे प्यार से। आप याद होगा हमारी दादी जब भी मुरली सुनाने आती थी बाबा के रूम होके जाती थी और आए दिन क्लास में सुनाती थी, आज बाबा ने ऐसा कहा, आज बाबा ने ऐसा कहा। मैं एक दिन बाबा को दादी को पूछा कि दादी बाबा कैसे कहते हैं, वहां तो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट से बाबा के वहां से मिल क्या है, बाबा ने कैसे कहा, नहीं बाबा कहता है मुंह ऐसा ऐसा करके कहता है। तो आप बाबा को देखते रहो, पूरा चैतन्य अनुभव होगा। कितने अज्ञानी आत्माएं अनुभव करते हैं, सुनाते हैं, वहां बैठते थे तो पूरा ऐसा लगा कि सचमुच आपका बाबा बैठा है। तो बाबा को निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, बाबा के आंखों को बाबा की कृपा दृष्टि पड़ेगी, बाबा नजर से निहाल करें, आंखें दरवाजा बंद करके ऐसे किसके सामने कैसे होगा, कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे नजर से निहालोंगे, कैसे पाप भस्म होगा। एक नियम पक्का बनाना है, कुछ भी हो जाए बाबा के कमरे में बैठे बाबा को देखते ना तो आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अगर नींद आती है आंखें बंद होती है, एक हरी मिर्ची साथ में रखना, अच्छी तरह से आंख में नहीं लगाना, आंख में तो जलेगा, मुंह में अच्छी तरह से चबा लेना तो नींद उड़ जाएगी। कुछ नहीं तो हरी मिर्ची नहीं है तो काली मिर्ची जो है, काली मिर्च रखो, दो चार मुंह में रख लो। तो एक बहुत बड़ा पक्का नियम करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, योग में अच्छा अनुभव करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी। अमृत वेला अच्छा होगा, जीवन एकदम मालामाल। नहीं तो फिर लड़खड़ाते रहेंगे, चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। क्या विचार है, जाएंगे सब सतयुग में ना? पक्का पक्का? वाह वाह वाह, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? इतना अंदर से दृढ़ नशा निश्चय, तो कल सवेरे अमृत वाला एकदम पावरफुल लाइट हाउस माइट हाउस होके सारे विश्व को अच्छी तरह से अमृत वेले, आधा समय अपने लिए आधा समय विश्व के लिए, दोनों। विश्व सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, ठीक है ना? नहीं, खाली स्व सेवा करते रहेंगे तो कहीं सरपंच बनेंगे किसी गांव का? राजा बनना है तो विश्व सेवा करनी पड़ेगी। ओके, ओम शांति।